मित्रों, भारत का आतिथ्य प्रसिद्ध है दुनिया भर में और वो किसी सरहद या सीमा तक सीमित नहीं रहता है। मानवता, भाईचारे और उदारता की एक अद्वितीय कहानी हमने आपको कुछ समय पहले सुनाई थी। शायद इतिहास में ये कहानी कभी लिखी भी नहीं गई और बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं। कुछ ऐसा है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जर्मनी ने और फिर यूएसएसआर ने भी पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो बहुत से लोग बेसहारा हो गए थे और करीब 1000 से भी ज्यादा बच्चों को, जो कि कुछ अनाथ थे, कुछ बेसहारा थे, उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया था। बहुत ही मुश्किल, कठोर परिस्थितियां थी। कई बच्चे वहां मर भी गए और उन बच्चों को शरण देने वाला कोई नहीं था। तब वॉर ऑफिस ने बाकी दुनिया से अनुरोध किया कि क्या कोई इन बच्चों की देखरेख कर सकता है, तो बहुत से देश तो तैयार नहीं हुए, लेकिन हमारे भारत के गुजरात में काठियावाड़ पेनिनसुला के नवानगर के महाराजा जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी ने उन बच्चों को 1942 से 1946 तक बालाचाड़ी कैंप में पूरा पूरा आश्रय दिया। उनके खाने पीने का ख्याल रखा, पढ़ाई का, खेलकूद का भी ख्याल रखा। हालांकि ब्रिटिश सरकार इस कदम से नाराज थी, लेकिन जाम साहब ने कहा कि वो अपने खर्चे से, अपने व्यक्तिगत पैसों से उन बच्चों की देखरेख करेंगे। और पोलैंड और वो बच्चे, उनकी वो उदारता और मानवता कभी नहीं भूल सके हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम बात कर रहे हैं नवानगर के पूर्व महाराज जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी की राजकुमारी हर्षत कुमारी साहिबा के साथ, जो जीवन के 70 से भी ज्यादा बसंत देख चुकी हैं, मगर उन्हें अब तक उन कैंप्स की और उन पोलिश बच्चों की बहुत सुंदर यादें हैं। आइए, प्रस्तुत है ये भेंट वार्ता। नमस्कार हर्षत कुमारी जी।
नमस्कार बहन।
आपके पिता श्री जाम साहेब दिग्विजय सिंह द्वारा पोलैंड के 1000 बच्चों को आश्रय देने की एक अद्वितीय, अद्भुत कहानी है और हमारे देश में ही क्या, दुनिया में ऐसी उदारता और ऐसा आतिथ्य कम सुनने को मिलता है। तो आप बताइए, आप उस जमाने में एक छोटी बच्ची रही होंगी, आपको क्या यादें हैं?
हाँ, बिल्कुल याद है कि हमारे जैसे बच्चे ट्रेन भर के आए
जी,
और हम उनको स्वीकारने गए थे बापू के साथ, भाई और बहन हम दोनों ही थे उस वक्त। हम छोटे छोटे थे और हमें कहा गया कि ये देखो, ये तुम्हारे नए भाई बहन आए हैं।
अच्छा।
और इनको अपने यहाँ घर करके रहना है, बहुत परेशान हुए हैं।
अच्छा।
तो हम तो देखते रहे, चौंक गए थे, क्योंकि बहुत ही अजीब स्थिति में थे ये बच्चे। बेचारे थके हुए थे, कहीं कहीं भटक भटक के कितने महीनों से आए थे। फिर उनको वहाँ बालाचड़ी में बसाए थे, कैंप बनाया था
बालाचड़ी, वो जामनगर के निकट है,
निकट है 17 किलोमीटर, 17 माइल दूर।
हाँ,
समुद्र किनारे बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि जामनगर समुद्र से करीब है मगर किनारे पे नहीं है।
हाँ,
और ये जगह बिल्कुल समुद्र पार था। हाँ, और दूसरी बाजू गाँव थे छोटे छोटे।
अच्छा।
और थोड़ी सी हरियाली भी गेरे थी
जी,
तो वहाँ उनका कैंप था। जब इनको बापू ने अडॉप्ट किए, तब अंग्रेज सरकार उसके विरोध थी कि तुम कैसे ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो।
अच्छा।
ये बच्चे दुश्मन बच्चे हैं। तो बापू ने फरमाया था कि बच्चे दुश्मन नहीं हो सकते हैं, ये क्या बात कर रहे हो, ये तो बढ़ते फूल है, उनको तो कहीं ना कहीं आश्रय देना ही चाहिए। तो कि नहीं, अपन नहीं दे सकते हैं, चर्चिल साहब वगैरह बोले थे। तो बापू ने बोला आप नहीं दे सकते हो, मैं तो दे सकता हूँ। एक लौट आया था अफ्रीका को होके, उस वक्त रेड सी में से नहीं आ सकते थे। और दूसरा लौट आए थे जमीन से।
अच्छा।
कहीं ना कहीं भटकते भटकते वो सेकंड लौट था,
अफगानिस्तान वगैरह के जरिए आए होंगे ना उन लोग शायद।
अफगानिस्तान में, मगर उनको तकलीफें पड़ी थी ईरान उधर को, क्योंकि वहाँ सब बॉर्डर्स कितने सारे पार करने पड़े थे
जी जी।
मगर दो लौट आए थे और मेरी यादी से तो ये 1200 से ज्यादा बच्चे फिर थे वो कैंप में।
तो आप लोग का मेल जोल फिर होता रहता था, जो राजवंशी बच्चे थे महल के, आप लोग इन बच्चों से कभी कभार मिलते थे?
कभी कभी जाते थे।
जी जी,
हाँ कभी कभी जाते थे, क्योंकि गर्मियों में हम उनके करीब ही रहते थे, हमारा वो गर्मी का रिसोर्ट जो था। हाँ पैलेस तो नहीं था, छोटे छोटे कैबिन और बंगले थे।
अच्छा।
उनके करीबी तो वहाँ जब थे तब हम मिलते जुलते थे, बार बार जाते थे उनके कैंप में, क्योंकि वो 5 मिनट का दौरा था। मगर जब हम वापस जामनगर अप्रैल में आ जाते थे तब 10-15 दिन में वहाँ जाते थे।
अच्छा।
मिलने करने, क्योंकि हम वहाँ समुद्र किनारे खेलने जाते थे।
हाँ जी जी जी, आपने तो बताया कि निकट में गांव भी थे छोटे छोटे, तो गांव वालों का रवैया कैसा था बच्चों के प्रति? उनके मन में भी बहुत प्यार उभरा होगा?
बहुत प्रेम था और उनको अपना लिए थे, तो उनको थोड़ा बहुत गुजराती भी सिखा देते थे। बापू ने वहाँ उनके लिए पोलिश स्कूल चालू रखी थी, जो पोलिश स्कूल चालू थी, और उनका कल्चर बापू बोले कि ये उनको भूलने का नहीं है, और हाँ। साथ साथ गुजराती भी सीखते थे।
अच्छा अच्छा, सुंदर।
हाँ, मगर पोलिश कल्चर बिल्कुल उन्होंने चालू रखा था, और उनके सब रिवाज विवाज का जो कुछ हो हाँ। वो करते थे।
तो कुमारी साहिबा, उन लोग तो क्रिसमस वगैरह भी मनाते होंगे, वो कैसा होता था?
पोलैंड में क्रिसमस 25 दिसंबर को अपन सब
मनाते हैं,
कहते हैं ना।
जी जी,
मगर उस जमाने में वो 15 दिसंबर में, मुझे अगर अच्छी तरह से याद हो तो वो सेंट निकोलस डे तो वो उनके लिए फादर क्रिसमस था।
अच्छा।
तो वो एक बड़ा झोला कद्दू के डाल के और दूसरे हाथ में एक ब्रूम सावेनी लेके वो आता था।
अच्छा।
और बोले कि हाँ कौन अच्छे बच्चे थे उनको तोहफा मिलता था, और कौन तूफानी था उसको वो झाड़ू से मारने का।
अच्छा।
वो ठेरा करता थे।
बहुत सुंदर रहा होगा। तो उनके लिए खाने पीने की पहले तो मुश्किलें आई होंगी?
नहीं, उनको फिर अपना देसी खाना खाने का तो फिर आदत आस्ते आस्ते पड़ी, मगर वेस्टर्न किचन तो हमारा था ही।
हाँ।
तो उस तरह का खाना थोड़ा बहुत वो बना लेते थे, जो बड़े लोग थे ना उनको हम सप्लाई कर देते थे बापू, जो चीजें चाहिए वो, और वो पोलिश तरीके से पकाते थे और देते थे।
अच्छा, अच्छा।
तो वो दोनों एक से दूसरे वो मिक्स करके किया था, तो वो उनको अनुकूल आ गया था।
अच्छा अच्छा, तो ठीक है।
और फिर खाते पीते थे, मगर पास्ता जैसी और ऐसी कोई चीजें हम नहीं दे सकते थे उस वक्त।
हाँ।
तो उनका जब विदेशी खाना बनाते थे ना, तब चावल पे जोर देते थे।
अच्छा।
नहीं, अब अगर उनको चपाती और रोटला, जो हम बाजरे हाँ, का हमारी ओर है ना, वो उनको बहुत सबको पसंद आ गया था।
अच्छा,
खिचड़ी वगैरह।
अच्छा।
हाँ, वो दोनों हाथ से खाते थे।
अच्छा, वाह भाई वाह।
मगर वो लोग जामनगर में कम आते थे, क्योंकि जब बापू ने इनको अपनाया ये बच्चों को, तब नवानगर स्टेट ने बोला कि हम इनका खर्चा क्यों उठाए, हमारे पास भी तंगी है, तो ये लोग को हम कैसे संभालेंगे। तो पब्लिक ने बहुत उस वक्त साथ नहीं दिया था।
अच्छा।
तो बापू ने बोला कि वो तुमसे मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, वो हाँ। मेरे घर खर्च में से इनका सब होगा इस्तेमाल, और मेरे जो निजी लोग है कि जिनको स्टेट के नौकर नहीं है, वो उनका ख्याल रखेंगे। तो उनको संभालने वाले भी टोली बिल्कुल अलग थी।
अच्छा अच्छा।
उनका सब देखभाल करने के लिए और डॉक्टर्स वगैरह वो सब अलग थे।
जी जी, हर्षद कुमारी साहिबा, आपने कितनी सुंदर और रोचक बातें बताई हैं जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी के बारे में और उनकी उदारता के बारे में, कि किस तरह इन्होंने पोलिश बच्चों की दूसरे विश्व युद्ध में देखभाल की है। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे, और इसका दूसरा भाग हम कल पेश करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। श्रोताओं को याद होगा कि कल हमने आपकी भेंट करवाई थी गुजरात के नवानगर में पूर्व जो महाराज हुआ करते थे जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, उनकी राजकुमारी हर्षद कुमारी साहिबा के साथ। हर्षद कुमारी जी हमें याद दिला रही थीं कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महाराज दिग्विजय सिंह जी जाम साहिब ने पोलैंड के 1000 से भी अधिक बच्चों को शरण दी थी, क्योंकि वो बच्चे बेसहारा थे, उनमें से कुछ अनाथ भी थे। तो कल उन्होंने बताया कैसे उनके लिए बालाचड़ी में कैंप्स बनाए गए थे, किस तरह उनको गुजराती भी सिखाई गई, किस तरह का खाना पीना होता था, और अंत में वो कह रही थी कि उनके लिए डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि वो बच्चे जब आए थे बहुत ही कमज़ोर, बहुत दुखित थे। तो आइए नवानगर की पूर्व राजकुमारी साहिबा हर्षद कुमारी के साथ पोलैंड के बच्चों की चर्चा का दूसरा भाग पेश करते हैं। नमस्कार हर्षद कुमारी साहिबा, आपसे फिर मुलाकात करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और कल आप हमें बता रही थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किस तरह नवानगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी ने बच्चों को आश्रय दिया, पोलैंड के बच्चों को, और उन्हें डॉक्टरों की व्यवस्था वगैरह भी करके दी। तो ये पूछूं, जब उन लोग आए थे तो काफी अस्वस्थ रहे होंगे, काफी कमजोर होंगे, तो धीमे धीमे
कमजोर, कमजोर तो कमजोर शब्द ही कमजोर है उनके लिए, वो बिल्कुल हड्डियां, और
अरे अरे
वो देख के अपने को, और उनकी आंखें इतनी सी दुख भरी थी ना,
हाय हाय।
और वहाँ आए और देखा कि यहाँ छूट छाट है, जमीन है, खेलने का है, जगह है, बहुत खुश हो गए थे आके, और डेढ़ महीने के अंदर स्वस्थ बन गए थे।
अच्छा अच्छा,
वो सब इतने साल रहे, उसमें दो बच्चे मरे, एक मलेरिया से और एक कुछ पानी में गिर गया था या ऐसा कुछ हो गया,
एक्सीडेंट,
नहीं तो सभी स्वस्थ वापस चले गए।
कितनी अच्छी बात। जब वो वापस गए हैं तो उसके बाद क्या एडल्ट्स बनने पर, बड़े होने पर भी उन्होंने आप लोगों से संपर्क बनाए रखा?
हम लोगों से कम संपर्क रखा, उन्होंने शायद कोशिश की हो, मगर उस वक्त पोस्टल सिस्टम से ही कर सकते थे ना।
जी जी।
मगर यहाँ से गए तब वो इतने बड़े तो नहीं हो गए थे, वो बच्चे ही बच्चे थे
जी,
क्योंकि 46-47 में जाना शुरू किया था। तो कई लोग ऑस्ट्रेलिया गए, कई लोग कनाडा गए, थोड़े से लोग पोलैंड वापस गए, कुछ 5-7 मेरे ख्याल से या हिंदुस्तान में ही रहे।
अच्छा।
मगर वो सब जब गए तो सब उनके जीवन में फिर लग गए।
जी जी।
तो जो पोलैंड पहुंचे वो लोग ने जो सब उनके सर्वाइवर लोग खुद को सर्वाइवर्स बोलते हैं, उन्होंने कांटेक्ट ऑस्ट्रेलिया वाले से, कनाडा वाले से, जहाँ जहाँ वो लोग गए हो ना उनके साथ रखा था, और वो यहाँ बताते रहे थे। 2-3 दफा उनकी एक टोली यहाँ आई थी जामनगर में। पहली दफे वो जब आया तब मैं स्कूल में थी कहीं, और बापू यूनो में भी गिरे होंगे तो वो नहीं मिल पाए थे। मगर फिर अभी 80s के बाद जब आए ना तब थोड़ा बहुत मिलना हुआ।
अच्छा।
और उनको उनको थोड़ा बुरा लगा था कि वो लोग जब आए कुछ लेके पोलैंड से मदद करने के लिए, तब बापू रहे नहीं थे, बापू चल बसे थे
जी।
तो उन्होंने फिर यहाँ के नगर पालिका वगैरह से मिले थे, तो बोले कि हमें कुछ करना है जामनगर के लिए, मगर हमको जाम साहब को देना है। तो वो लोग तो समझे नहीं थे कि यही जाम साहब का है, तो कि नहीं ये तो भारत का है, मगर हमें तो हमको जाम साहब ने रखे थे।
जी जी जी।
तो फिर दूसरी दफा जब दोबारा आया तब वो एक नया इलाका यहाँ बना था, एयरपोर्ट और शहर के बीच में, वहाँ पानी का कोई प्रबंध नहीं था, जो पानी का प्रबंध उन्होंने कर दिया, उसके लिए खर्चा दिया।
हर्षित कुमारी जी, ये कहानी भारत में इतनी जानी नहीं गई है, लेकिन पोलैंड में बच्चा बच्चा जानता है, तो भारत में ये कहानी क्यों नहीं प्रख्यात हुई?
प्रख्यात करने कौन करने वाला था? जब इंडिपेंडेंस आया और जब ये बच्चों वापस जाना शुरू किया, तभी जो कारोबार संभालने वाले आए उनको और बहुत कुछ करने का था, सीखने का था, उनको भी नहीं पता था कि कैसा क्या करना। तो वो सब ये गवर्नेंस में और अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी तो चली गई, उनमें जो देसी लोग थे वो कुछ थे, वो सिखाने की कोशिश करते थे
जी।
तो they were preoccupied with other matters,
तो
वो लोग तो कहाँ जानने वाले। और मैं बोली कि जामनगर वालों ने तो शुरुआत में विरोध किया था बापू से कि ये और मुंह कहाँ लेके आते हो, अभी तंगी है तब। तो आज तक जामनगर में बहुत कम लोग को पता है ये बात।
वाह वाह वाह।
पर बापू प्रोपेगेंडा करने वाले थोड़े थे, बापू ने तो जो कार्य करना था सो कर दिया।
क्या बात है।
उनको दुख पहुंचा था कि बच्चों को कोई बोले कि दुश्मन है, वो उनसे सहा नहीं गया तो वो लेके आए और उन्होंने उनके तरह से जी करना था, वो प्रेम भाव और सब सरभरा कर दी थी। वो तो कुछ टॉम टॉम करने वाले नहीं थे ना, व्हाट आई डिड। सबसे ज्यादा पोलिश लोगों ने इनका ये जागृत रखा है और वहाँ पे एक शेरी का या एक चौराया का नाम गुड महाराजा स्क्वायर रखा है और एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है स्कूल जैसा जिसपे बहुत ही सब भारतीय चीजें भी सिखा जाते हैं। चीजें हैं।
अच्छा वाह वाह।
और हमारे यहाँ कुछ इसकी याद ही नहीं है, वो कैंप भी चला गया, वहाँ एक सैनिक अकेडमी खड़ी हो गई है वो जगह पे।
तो ये लोग बहुत कृतज्ञ रहे हैं, आप लोगों के आभारी रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात है कि इतने बरसों बाद भी उन्होंने भलाई को भुला नहीं दिया। इन्होंने
नो उन्होंने भुला नहीं दिया है और पोलैंड का प्रेसिडेंट कुछ अभी भी बापू के नाम पे कुछ अवार्ड देना चाहते हैं कि जो पोलैंड का सबसे श्रेष्ठ है। अगर वो टाइम नहीं मिला है सबको मिलने के लिए तो
जी।
उन्होंने तो बहुत याद रखा है। और वो लोग जो आए थे दो तीन दफा, और दो जन आए थे कुछ पांच साल पहले और फिर उसमें से एक गुजर चुके हैं, तो दूसरा आया था उसकी बेटी को लेके, मेरी उम्र का होगा वो भी। तो उनकी यादी, मुजामनगर को तो होम बोलता है कि दिस इज माई होम। और बोले कि यहाँ हमें जीवन मिला, हमें आशा दोबारा मिली, जब कोई हमारा नहीं था तब हमको जीवन जीने का फिर अपेक्षा मिली।
बहुत अच्छा जी, इतनी सुंदर मर्म स्पर्शी कहानी हर्षद कुमारी जी आपने हमारे साथ बांटी है। और जो महानता है, जो उदारता है, जो आतिथ्य आपके पिता श्री जाम साहब ने दिखाया है वो अद्वितीय है। और मुझे लगता है कि इस रेडियो के माध्यम से लोग ये कहानी सुनकर बहुत ही उत्साहित होंगे, एनकरेज भी होंगे, प्रेरणा भी मिलेगी उनको। बहुत धन्यवाद।